हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ब्रह्मवाच नौमीड्यते ब्रवपुषे तदिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षलसन्मुखाय वन्य स्रजे कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय
हरे
कृष्ण। इस अध्याय में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान के चरणों में अत्यंत विनम्र भाव से स्तुति है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्तुति है। श्रीमद् भागवतम में इस स्तोत्र का बहुत बड़ा महत्व है। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में स्तुति निवेदन किया है और इसके माध्यम से भगवान के विशेष विशेषताओं को प्रकट किए हैं। श्री भगवान के बाद दूसरा महान विद्वान ब्रह्मा भगवान के विषय में बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान को जानने वाले बहुत रेयर लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। यमराज कहते हैं कि ऐसे विशिष्ट 12 लोग हैं जो भगवान को ठीक ठीक जानते हैं। एक जगह कहा गया है केवल 3 लोग जानते हैं, भगवान कपिल देव, भगवान शिव, ब्रह्मा आदि। और यमराज जी 12 लोगों का नाम रखते हैं जिसको द्वादश महाभागवत कहा जाता है। स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो, मनु, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलि, वैयासकी, वयम। स्वयंभू ब्रह्मा का नाम है क्योंकि ये अपत्यवाचक नाम है, स्वयं भगवान का नाम है। स्वयं जिनका कोई उत्स नहीं, कोई कारण नहीं, वो अपना कारण स्वयं है। तो भगवान का एक नाम स्वयं है और स्वयं से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा का नाम स्वयंभू है। तो यमराज जी कहते हैं कि स्वयंभू जानते हैं ब्रह्मा, नारद जानते हैं स्वयंभू, नारद शंभु भगवान शिव जानते हैं स्वयंभू, नारद शंभु, कुमार सनत कुमार जानते हैं कुमार, कपिलो मनु भगवान कपिल देव और स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि महाराज, वैयासिकी सुखदेव गोस्वामी और इसके साथ अपना नाम भी रखते हैं मैं यमराज वयम। तो 12 लोग भगवान को ठीक ठीक जानते हैं, मतलब तत्वतः नहीं लेकिन ज्यादा। भगवान को तत्वतः तो केवल भगवान जानते हैं और कोई नहीं। तो इस प्रकार 12 भगवत तत्ववेताओं में ब्रह्मा जी का स्थान सबसे श्रेष्ठ है। तो अब ब्रह्मा भगवान के विषय में बोल रहे हैं। बीच बीच में श्रीमद् भागवतम में इन द्वादश महाभागवतों का प्रवचन है। तो जिनको भगवान के विषय में जानने की इच्छा है उनको अवश्य इन महापुरुषों के मुख से प्रवचन सुनना चाहिए। किसी न किसी रूप में ये अपना उद्गार व्यक्त किए हैं। जैसे भीष्म पितामह का उद्गार प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में है। श्री भगवान के स्तुति करते हुए अपने जीवन के अंत में भीष्म ने भगवान के विषय में वर्णन किया है। वैसे सुखदेव गोस्वामी तो संपूर्ण भागवत ही कह रहे हैं, नारद जी का प्रवचन है, यमराज का प्रवचन है, बलि महाराज के भी उद्गार है, प्रहलाद महाराज का उद्गार है, स्वयंभू मनु का उद्गार है, सबका बीच बीच में भागवत में बारहों महापुरुष का उद्गार है। यहाँ 40 श्लोक तो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, 40 श्लोक एक दिन का कोर्स, एक सिटिंग का कोर्स नहीं है, अपने आप में यह एक सप्ताह का समय ले सकता है पूरा। दोनों सिटिंग अगर 7 दिन ब्रह्मा जी के स्तुति पर बोला जाए तो सामान्यतः अर्थ किया जा सकता है। अभी इस सिटिंग में 15 श्लोक, सिलेक्टेड 15 श्लोक जो सुप्रसिद्ध हैं, उन श्लोकों पर चर्चा करेंगे। और इसमें से कुछ श्लोक इतने महत्वपूर्ण हैं कि वो प्रभुपाद बहुत पसंद करते थे। श्रील प्रभुपाद के कुछ फेवरेट श्लोक इस स्तुति में हैं, जिनको प्रायः कहीं भी प्रीचिंग के मूड में बोल ही देते थे। बहुत उपादेय है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रभुपाद के कुछ फेवरेट श्लोकों पर चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा वे अपने प्रवचन में किए हैं। अगर आप प्रभुपाद के लेक्चर सुने हैं तो ये सब श्लोक आएंगे जिन पर मैं कुछ चर्चा करूंगा। तो ब्रह्मा जी की अवस्था का वर्णन कल हो रहा था कि जब श्री भगवान के महत्व स्वरूप का दर्शन किए कि वे अनेक रूप में बछड़े और गोप सखा के रूप में वही हैं, तो ब्रह्मा जी धीरे धीरे अपने को संभाले, आंसुओं को पोंछे और पोंछ करके हाथ जोड़ लिए, बड़ी विनम्रता के साथ एकाग्र भाव से गदगद वाणी में भगवान के गुणों का वर्णन करने लगे। तो सबसे पहले भगवान के सौंदर्य का दर्शन करते हुए प्रणाम करते हैं, तो प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे ईड्य, हे स्तुत्य, वास्तव में एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। ऐसे लोग किसी की प्रशंसा कर देते हैं, कुछ कह देते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, लेकिन ईड्य आप हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ते अभ्र बपुषे तदिदम बराय, हे श्याम सुंदर, आपका यह शरीर वर्षा कालीन मेघ के समान श्यामल है, बहुत सुंदर रूप है। इस पर जो वस्त्र धारण किए हुए पीताम्बर, तदिदम बराय, इसके ऊपर बिजली से चमकता हुआ, झिलमिलाता हुआ पीताम्बर बहुत सुंदर लग रहा है। जो हृदय में रूप छाया हुआ है, जिसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं। आपके गले में एक गुंजा की माला है, गुंजा माला घुंघची की माला है, जो वन में होता है, लाल लाल और उसमें थोड़ा सा काला काला, बड़ा सुंदर घुंघची, उसको गुंजा कहते हैं। तो गुंजा वतन से आप गुंजा का मुकुट धारण किए हुए हैं, बहुत सुंदर है, माला धारण किए हुए हैं, और परिपीछल आपके मुकुट में मोर पंख है, बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके साथ इन सब सौंदर्य से आपका मुख बहुत सुंदर लग रहा है, लसन मुखाया, सामने हमारे सामने आप खड़े हैं, आपके मुख की अनोखी छटा है, बहुत सुंदर लग रहा है। वन्य सजे, आप वन के फूलों का माला पहने हैं, सज कहते हैं पुष्प माला को, आप पुष्प माला धारण किए हुए हैं, बहुत सुंदर माला लग रही है। और आपके नन्ही नन्ही हाथों में, बाएं हाथ में कवल है, दही भात का कवल, सामने भगवान अब उसी रूप में दिख रहे हैं जो पहले 1 साल पहले देखे थे। तो आपके हाथ में दही भात का कौर है और बगल में बेत लिए हैं, अपने कांख में छड़ी पशुओं को हांकने वाला, अब खा रहे हैं, हाथ बजा हुआ है तो उसको बगल में फेटे में डाल लिए हैं, और बांसुरी भी आपके कमर में खोसी हुई है, और आपके सुंदर सुकोमल चरण कमल बहुत अच्छा लग रहा है। लक्ष्मण श्री आपके वक्षस्थल में वत्स चिन्ह दिख रहा है, और मृदु पदे सुंदर मुलायम कोमल चरण बहुत सुंदर लग रहे हैं। हे पशुपांग जाय, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे गोपाल लाल, हे नंद नंदन, हे गोप बालक, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। भगवान का यह रूप ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा लग रहा है। यद्यपि इस श्लोकों में पर आचार्यों की बहुत टीका टिप्पणी है, एक एक शब्द का एक एक भावपूर्ण अर्थ किए हैं, लेकिन हम सबको नहीं कह पाएंगे। एक श्लोक ही अगर व्याख्या ठीक से किया जाए तो 3 घंटा से भी ज्यादा लगेगा। तो एक एक शब्द पर आचार्य ने लिखा है कि इस प्रकार ब्रह्मा जी क्यों देख रहे हैं, क्या बात है। बहुत बड़े बड़े ऐश्वर्यपूर्ण रूपों का दर्शन किए हैं, भगवान की महिमा को ब्रह्मा जी जानते हैं, लेकिन उनको यह नंद नंदन गोपाल लाल रूप बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ब्रह्मा के इस अज्ञान का नाश इसी रूप ने किया। जो अज्ञान छाया हुआ था कि हम सृष्टि करता हैं, हम बहुत बड़े हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, लेकिन यह गोपाल रूप ब्रह्मा का सारा ज्ञान दूर कर दिया बहुत सहज भाव से। न ऐश्वर्य प्रकाश करके, न डांट कर, न कुछ, बस साधारण बाल रूप में भगवान के सुंदर रूप ब्रह्मा के चित्त में छा गया है। इसलिए इनके रूप का वर्णन करते हुए प्रणाम कर रहे हैं। तो श्री भगवान परम सुंदर हैं, भुवन सुंदर हैं, इनके सौंदर्य का दर्शन करना चाहिए। और ऐसा नहीं, यहाँ जो भी रूप का वर्णन किए ब्रह्मा जी, जिस वेश का वर्णन किए, वो कोई बहुत बाहरी ढंग से सजावट नहीं है, सहज रूप का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ बन्न सजे गुंजावतंश परिपीक्षल, ये सब सामान्य वन के चीज हैं। वन में होने वाले गुंजा, वन में गिरे हुए मयूर पंख, वन के फूलों का माला, जहाँ सहज रूप से प्राप्त है। मयूर पुक्ष भगवान अपने मुकुट में लगा लिए हैं, सुंदर लग रहे हैं। अगर वो कौआ का पंख भी खोस ले तो अच्छा लगेंगे। और भागवत में वर्णन भी है कि वो कौए का पंख भी खोसते थे अपने मुकुट में। ऐसा नहीं कि मोर पंख विचित्र रंग से है इसलिए वो अच्छा लगते थे। सुंदरे की मसुंदर, हम कोई सुंदर व्यक्ति है तो कपड़ा पहनकर ही सुंदर नहीं लगेगा, वो केवल एक गमछा पहन ले बहिर्वास तब भी सुंदर लगेगा, क्योंकि उसका शरीर सुंदर है। इसीलिए भगवान ज्यादा सूट बूट नहीं पहनते थे, कम कपड़ा पहनते थे, और कम कपड़ा में ही वो अच्छा लगते थे। ज्यादा पहनकर एक बार कुरुक्षेत्र में आए थे तो गोपियां उस रूप को नहीं पसंद की, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ये सूट बूट और मोजा जूता क्या रूप धारण किए हो, और ये हाथी घोड़ा रथ बिल्कुल नहीं उनको अच्छा लगा। उनका रूप ही ढक दिया गया वस्त्रों से। भगवान को कम वस्त्र, खास करके जंगल का चीज, वन का फूल पत्ता और वन के माला पहना दिया जाए, केवल पुष्पों में सजावट कर दिया जाए और पत्ते से घास से तो अच्छा लगते हैं, और बाहरी चीज खूब रत्न मुकुट और कपड़ा उपड़ा पहना देने पर उनका सौंदर्य ही ढक जाता है। तो बहुत सुंदर भगवान लग रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। हम केवल आपको प्रणाम कर रहे हैं, बस केवल प्रणाम। तो भगवान कहते हैं, मानो भगवान कहें कि ऐसे ही प्रणाम कर रहे हो कि कुछ मुझको समझते भी हो, कुछ हमारे महत्व को समझ कर प्रणाम कर रहे हो कि ऐसे ही कर रहे हो। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, अस्यापि देव बपुषो मदनो ग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महि त्ववशितुं मनसांतरेण साक्षात त्वयैव किमुतात्म सुखानुभूते। हे प्रभु, आप स्वयं प्रकाश हैं, आपका ऐसे विग्रह भक्तों की लालसा पूर्ण करने वाली है, यह आपकी चिन्मय इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर आपका साक्षात कृपा प्रसाद है। आप मुझे अनुग्रहित करने के लिए इसको प्रकट करते हैं। अगर कोई वर्णन करना चाहे तो कौन आपके रूप का वर्णन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यह पंचभूतों की रचना नहीं है, यह प्राकृत वस्तुओं से शरीर नहीं बना है। प्रभु यह शुद्ध सत्यमय अप्राकृत तत्व है, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं क्या बताऊं, कोई भी व्यक्ति समाधि लगाकर भी आपके सच्चिदानंद विग्रह की महिमा को नहीं जान सकता, मैं क्या जानूंगा। नैसे मही तो अवश्य तुम मनसांतरेण, खूब समाधि में अपने चित्त को समाहित करके भी कोई समझना चाहे तो आपको नहीं समझ सकता, कोई भी एकाग्र मन से भी आपको नहीं जान सकता। अश्याप देव बपसो मदनुग्रहस्य, आप तो मुझ पर विशेष कृपा करके अपना रूप प्रकट किए, मैं देख रहा हूं, मुझे देखने की शक्ति प्रदान किए, आपकी कृपा है। स्वेच्छा मयस्य न तो भूत मयस्य कोपी, इस संसार के किसी वस्तु से आपका डेकोरेशन नहीं हुआ है और आपका सौंदर्य प्राकृत नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपकी महिमा को जान सकता है। जब ब्रह्मा ही नकार रहे हैं कोई नहीं जान सकता तो दूसरा कैसे जान सकता है, तो फिर तू बिना जाने बुझे मुझको प्रणाम कर रहा है। अरे प्रणाम तो उसको किया जाता है जो महान हो, बड़ा हो, श्रेष्ठ हो, उसका कुछ महिमा हो, उसका कुछ गौरव हो, वो प्रणाम है ना। तो तू ऐसे बिना जाने बुझे मुझको प्रणाम करे एक गाय के चरवाहे को, तो कहते हैं प्रभु मैं तो भक्ति के नियमानुसार केवल आपको प्रणाम कर रहा हूं। भक्ति में एक प्रणाम भी अपना महत्व रखता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, वंदनम भी एक है प्रणाम करना। तो मैं तो भक्ति के नियमानुसार केवल आपको प्रणाम कर रहा हूं, बस सुना हूं कि आप प्रणाम करने पर प्रसन्न होते हैं, दुख दूर करते हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं बिना जाने बुझे। कहते हैं आपके विषय में जानने का प्रयास व्यर्थ है। तब आगे कहते हैं ज्ञाने प्रयास मुदपाश नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थान स्थिता सुतिगताम तनुवांग मनोभी ये प्राजसो जित जितो प्यसित स्त्रीलोक्याम। हे नाथ, ज्ञान का प्रयास दूर से छोड़कर केवल विनम्र भाव से झुक कर जीवन दिशन मुखरिताम भवदीय वार्ताम, जो व्यक्ति साधु पुरुष के मुख से निकली हुई आपकी कथा को सुनता है, स्थाने स्थिता सुतिगताम तनुवांग मनोभी, स्थान में स्थित होकर अपने बाणी अपना मन अपना शरीर सब कुछ विनम्र भाव से केवल आपकी कथा को सुनता है, वह व्यक्ति प्रायश अजित जीतो जीतोपि असित स्त्रीलोक क्या। यद्यपि आप स्त्रीलोक में प्रसिद्ध हैं कि आपका नाम अजित है, आपको कोई जीत नहीं सकता, युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, लेकिन हे नाथ आप जैसे अजीत को भी वह भक्त जीत लेता है, अपने बस में कर लेता है जो आपकी कथा को सुनता है। साधु पुरुषों के मुख से निकली हुई आपकी कथा को सुनता है, कैसे स्थाने स्थिता। इस श्लोक की बहुत व्याख्या है। स्थाने स्थिता का अर्थ है जिस कंडीशन में है वहीं से बस कथा सुनना है। धनी है, गरीब है, स्वस्थ है, रोगी है, बूढ़ा है, जवान है, स्त्री है या पुरुष है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, न्यूयॉर्क में है, भारत में है, कहीं भी है, किसी भी जगह पर है, जिस स्थिति में है वहीं से केवल आपके विषय में जो सुनता है वो आप त्रिलोक को प्रसिद्ध अजीत को अपने वश में कर लेता है, जीत लेता है। इस जगत में प्रसिद्ध है कि आप अजीत हैं, आप त्रिलोकी में कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वह भक्त जो आपकी कथा को सुनता है वह आपको वश में कर लेता है, उसके आप अधीन हो जाते हैं। तो स्थान स्थिता का अर्थ महाराज श्री अपने प्रवचन में करते हैं कि स्थान स्थिता का मतलब जहां एक कथा संभव है, जहां एक कथा होती है उस स्थान में एकदम टीक कर कथा सुनता है। ऐसा नहीं कि एक सीटिंग सुना और फिर चला गया, पूरा पूरा 7 दिन सारा काम धंधा सब कुछ छोड़कर, सब मोबाइल स्विच ऑफ करके एकदम बैठ करके कथा सुने पूरा स्थित होकर। और स्थान मतलब जहाँ साधु पुरुष रहते हैं, जहाँ भगवत कथाएं हो सकती हैं, वहां पर जाकर उस स्थान में स्थित होकर पूरी तरह से कथा सुने। ऐसा नहीं कि एक सीटिंग सुना अब काफी हो गया, अब चलते हैं बहुत काम है, अथवा 2 सीटिंग सुना, पूरा पूरा जब तक कथा संभव है, मिल रही है, वो तब तक सुनना चाहिए। और पढ़ने लिखने जानने का प्रयास छोड़कर, जो ज्ञान के प्राप्त करने के प्रयास को छोड़ देता है, उत्पाश्य परजीव गोस्वामी लिखते हैं, ज्ञाने प्रयास उत्पाश्य, उत्पाश का मतलब दूर से छोड़ दे, उसके चक्कर में पड़े ही नहीं ज्ञान के। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ बायोलॉजी तो एकदम इसका तो कोई चर्चा ही नहीं, भगवत विषयक सृष्टि विषयक और भगवत तत्व विवेचना, महत्त्व और तात्विक निर्णय, इन सब का ज्ञान के फेरा में छोड़कर, भगवान के ऐश्वर्यपूर्ण लीलाओं को छोड़कर, केवल आपके वृंदावन बिहार इन बाल लीलाओं को ही सुनने में जिसकी मति लगा है वो आपको बस में कर सकता है। इस चक्कर में नहीं, उत्पाश का मतलब बहुत दूर से, और बहुत दूर से ज्ञान का प्रयास सुनने का मतलब कि आपके तात्विक विचार के चक्कर में छोड़कर, बहुत ज्यादा विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा भाषा और बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसी उत्पाश का व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आपको जानने के चक्कर में बहुत टाइम लगता है, तीर्थ यात्रा करता है, घूमता है सब जगह, कहाँ क्या है, एक जिज्ञासु के मूड में उसकी भी जरूरत नहीं है। और ज्यादा डिटेल करते हुए जीव गोस्वामी कहते हैं, न शास्त्र अध्ययन की जरूरत है, न तीर्थ यात्रा की जरूरत है, कुछ नहीं जरूरत है। उत्पाश का मतलब बिल्कुल इसका चक्कर छोड़कर विनम्र होने की जरूरत है, कोई अहंकार नमन तेव, विनम्र होकर। और जीवंती, जीवंती का मतलब जीवन शैली बना लिया है, बिना कथा के जी नहीं सकता। जैसे कुछ लोगों के जीवन में आदत पड़ जाता है कि वो जगते ही चाय पीते हैं, बिना चाय पिए कुछ कर ही नहीं सकते, बिना तमाकू खाए उनको अच्छा ही नहीं लगता, बोरियसनेस होने लगता है। तो ऐसा जिनका जीवन शैली बन गया है थर्ड क्लास, तो ऐसे लोग निश्चित रूप से दुर्गति को प्राप्त करते हैं। और जिन महत्पुरुषों की जीवन शैली कृष्ण कथा हो गई है, जीवन थी, जीते ही है कथा से, बोलते हैं कथा, सुनते हैं कथा, जो केवल नाम सुनते हैं, ऐसे लोग भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। अब एक प्रश्न होता है कि ज्ञाने प्रयास उत्पाश की बात है, तो क्या भागवत श्रवण और ये भागवत सत्र सेमिनार, ये क्या ज्ञान का प्रयास नहीं है? ये भी तो ज्ञान का प्रयास है, हम भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो कहते हैं नहीं, यह ज्ञान का प्रयास नहीं है, केवल भक्ति है। और भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप होंगे, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, ये अपने आप प्रकट होते हैं। तो वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, भगवान की भक्ति करने से एक ज्ञान वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित, जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम्। भगवान की भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य अपने आप उत्पन्न होते हैं, हो जाता है। तो भागवत श्रवण यह भक्ति है, ज्ञान का प्रयास नहीं है। और भगवान की भक्ति करने से 3 काम एक साथ होती है। भागवत धर्म के निरूपण करते हुए एकादश स्कंद में कहा गया है, कवि जी कहते हैं कि जैसे कोई भूखा व्यक्ति, खूब भूख लगी है, उस समय अगर भोजन करता है तो एक साथ 3 काम होता है। भूख की अवस्था में शरीर में कमजोरी फीलिंग होने लगता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं और पेट में क्षुधा बहुत बाधित करती है। तो उस अवस्था में अगर हम भोजन करते हैं तो एक एक ग्रास पर 3-3 काम होता है। भोजन में स्वाद मिलता है, अगर खूब खाए पिए हैं तो कितना हो स्वादिष्ट पदार्थ दिया जाए अच्छा ही नहीं लगता है। नहीं मैं नहीं लूंगा। अरे राधा माधव का राज भोग है, एक रसगुल्ला ले लीजिए। नहीं बिल्कुल अच्छा, चलो रस मलाई ले लो, पायस खीर ले लो, कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है एक दाना। आज जब भूख लगी है तो जो भी सामने आ जाता है उसको खाने लगता है, उसमें अच्छा लगता है। तो भूखे अवस्था में भोजन में स्वाद, भोजन करते समय टेस्ट की अनुभूति होती है और एक एक ग्रास पर शरीर की कमजोरी दूर होने लगती है खाते समय ही, नहीं कि खाने के दो चार घंटा बाद ताकत मिलेगा, एक एक कौर पर ही ताकत मिलने लगता है। और जो पेट की क्षुधा की बाधा है वो दूर होने लगती है, क्षुधा निवृत्ति, क्षुधा जो है भूख का अनुभव वो शांत होने लगता है। तीन काम एक साथ होता है, टेस्ट भूख भोजन में स्वाद, क्षुधा की निवृत्ति और शक्ति। उसी प्रकार जब व्यक्ति भक्ति करता है, जैसे आप लोग श्रवण कर रहे हैं सुन रहे हैं, ये भक्ति है, भक्ति का प्रथम अंग है श्रवणम। तो सुनने से ही भक्ति हो रही है और जब भक्ति के माध्यम से श्रवण के माध्यम से भगवान का प्रबोध होता है, भगवान के विषय में वर्णन किया जाता है, संसार के विषय में वर्णन किया जाता है, आपके कर्तव्य के विषय में वर्णन किया जाता है, तो ज्ञान होता है। अरे मैं तो गलत जगह पर फंस गया यार, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान है और मैं कितना बुरा जगह में फंसा हूं, मुझे निकलना चाहिए। तो जानकारी होते ही वैराग्य होता है। अरे इतना ऑफिस दुकान, इतना चक्कर में पड़ा हुआ जीवन बर्बाद करो, नहीं नहीं अब कम करना है, अब जिम्मेवारी थोड़ा थोड़ा ढीला करना है, लड़कों को देना है और मैनेजर दूर रहूंगा, थोड़ा जब भजन करना है, भागवत में रस है। तो जब यह अनुभूति होती है तो ज्ञान और वैराग्य अपने आप हो जाता है, ज्ञान होता है और फिर विषयों से वैराग्य। कहां मैं पागल, जब विदेश से लौटता था जाता था तो एक छोटा सा सामान लेकर लौटते समय 10-10-12 ब्रीफकेस अटैची पागल की तरह कलेक्शन करता था। एक भक्त कह रहे थे, वो शिप में काम करते थे, इंजीनियर थे, कहते थे इतना पागल था मैं प्रभु जी क्या बताऊं। जब तीन महीना के बाद लौटता तो मेरे पास 10-15 झोले और बड़े बड़े बैग होता था, कोई जरूरत नहीं मेरे लिए, इसलिए कलेक्शन करता था कि अपने लोगों को दूंगा बिना मतलब के टेंशन। तो अब समझ में आ गया कि ये सब मूर्खतापूर्ण प्रयास था। तो ये भक्ति के द्वारा पता चलता है। और जब स्थाने स्थिता सत्यगतम तनवांग मनो भी, मन से शरीर से वाणी से सब तरह से विनम्र होकर भगवान के कथा और कथा कहने वाले साधु पुरुष के प्रति विनम्रता होने पर प्रायः ऐसा होता है कि भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। अजितोपि जितो असि, अजित भी जीत लिए जाते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं। वो कुछ उनसे चाहता नहीं लेकिन उनके पीछे पीछे वो चलते हैं। एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी, आप उनकी कथा जानते हैं, मैं इतना डिटेल नहीं कह पाऊंगा समय अभाव में। जब वो राधा कुंड पर भजन कर रहे थे तो एक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा किए, गर्मी का दिन था, एकदम धूप छिलछिलाते हुए धूप में, और आ करके राधा कुंड पर जब एक वृक्ष के नीचे बैठकर जप करने लगे, जो उनका अपना नियम था वो जप पूरा नहीं हुआ था, तो उसको पूरा करने के लिए जप कर रहे थे। उनका 16 माला नहीं था, वो लोग बहुत ज्यादा जप करते थे। तो जप कर रहे थे तो थके मांदे थे ही, धूप लगा हुआ था, जो ही वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर जब प्रारंभ किए थे तंद्रा आने लगी थकावट के कारण, और माला उनके हाथ से छूट जाता था, फिर क्षोभ होता। अरे तब अनुभव किए कि इस वृक्ष के छाया से दुर्दशा हो रही है, ठीक से जप नहीं हो रहा, चलो धूप में बैठकर करूंगा। तो वृक्ष से हटकर एकदम चिलचिलाते हुए धूप में बैठ गए और जब प्रारंभ किए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आनंद से जप रहे थे। तब तक सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते हुए आए, दूर से देख रहे हैं कि रघुनाथ वृक्ष के पेड़ के नीचे नहीं बैठा है, धूप में बैठा है और उसके पीछे राधा रानी खड़ा होकर अपना आंचल फैलाई है। तो सनातन गोस्वामी को इतना गुस्सा आया कि बेवकूफ वृक्ष के नीचे बैठा होता तो किशोरी जी को इतना तपस्या नहीं करना पड़ता। तो आए सोचे कि चलो उसको डांटूंगा। सनातन गोस्वामी आकर पूछे, रघुनाथ तू यहां क्यों बैठे हो? तो कहे कि वृक्ष के नीचे बैठने पर तंद्रा आ रही थी, तो यहां धूप नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बड़ा आनंद आ रहा है। तो कह रहा कि आनंद आ रहा है मूर्ख, तुमको पता है तुम्हारे पीछे राधा रानी खड़ा होकर आंचल फैलाई थी। अच्छा ऐसा? एकदम रघुनाथ को बड़ा ग्लानी होने लगा, आज के बाद तुमको ऐसा कुछ नहीं करना है और अब तुमको कुटिया में रहना है, आज के बाद इधर इस पेड़ उस पेड़ क्या नहीं, तुम्हारे लिए कुटिया बनवाता हूं। ब्रजवासियों को कहकर सनातन गोस्वामी कुटिया बनवा दिए। कहे अपने मन का नहीं करना है, कुटिया के अंदर रहना है और भजन करना है कायदे से, कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसमें भगवान को कुछ सोचना पड़ जाए, ऐसा नहीं करना है। तुम तो नहीं अपेक्षा करते हो लेकिन वो तो तुम्हारे पीछे हो जाते हैं ना। एक बार आप चित्र देखे होंगे रघुनाथ दास गोस्वामी के समाधि के अंदर कि रघुनाथ गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठकर भजन कर रहे हैं, तब तक एक बाघिनी अपने बच्चे के साथ आती है पानी पीने के लिए राधा कुंड में, एकदम बिल्कुल निकट में रघुनाथ दास गोस्वामी के बगल में पानी पीती है। वो तो अपने जप में मस्त है, वो देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हाथ में धनुष बाण लेकर आ रहे हैं कि कहीं अगर आक्रमण करेगी तो मारूंगा। तो चित्रपट में चित्र है, रघुनाथ अपने भजन मस्त है, वो पानी पी रहे हैं और पीछे भगवान खड़े हैं कि अगर कुछ डिस्टर्ब करेगी तो बचाऊंगा अपने भक्त को। ये है अजिता अपि जितो असी। भक्त नहीं चाहता कि मेरा नौकरी भगवान करें लेकिन बिना किए रह नहीं पाते, इसीलिए भागवत में कहते हैं कि मैं अपना प्रेमा भक्ति नहीं देना चाहता हूं। अगर कोई साधारण चीज मांगता है भजन करके तो बड़ा अच्छा लगता है कि संक्षेप में खत्म हो गया, अगर कुछ नहीं मांगता तो बड़ा टेंशन बढ़ जाता है कि अब इसको क्या करूं, तो अब कोई उपाय नहीं रहता तो नौकर बन जाते हैं। तो इस तरह अजितो अपि जितो असि, केवल श्रवण कीर्तन करने वाले के प्रति भगवान अधीन हो जाते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि यह जो ज्ञान का प्रयास है वो कैसा है, कहते हैं व्यर्थ है, केवल परिश्रम है। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्य ते विभो क्लिशन्ति जे केवल बोध लब्धे तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत यथा स्थूल तुषाव घातिनाम। हे भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का उद्गम है, स्रोत है, मूल स्रोत है। जैसे बरसात में बारिश होने के बाद पहाड़ के रेतीली भूमि सूख लेती है जल को, और इसके बाद वो अंदर सूख करके फिर कहीं से निकलता है, उसको श्रेय कहते हैं। श्रेय श्रुतिम, यह भक्ति श्रेय श्रुतिम, श्रेय माने कल्याण, कल्याण का जो स्रोत है जिसे निकलता है कल्याण वो भक्ति है, श्रवण। जब व्यक्ति केवल भक्ति करता है तो उसका सभी प्रकार का मंगल हो जाता है, और उसके अतिरिक्त भक्ति को छोड़कर श्रवण कीर्तन नाम जप प्रणाम आदि को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करता है, क्लिश्यंती कष्ट सहता है, जे केवल बोध लब्ध है, जो को केवल बोध प्राप्ति के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए कष्ट सहता है, उसको क्या मिलता है? तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, वो केवल परिश्रम थकावट थकान प्राप्त होता है। नान्यद यथा, जैसे स्थूल तुषाव घातिनाम। तो बंगाल में तो बहुत बहुत बड़े बड़े राइस मिल होंगे या चावल के मिल आप देखे होंगे, जहां धान से चावल निकलता है और उसका भूसी बाहर गिरता है। तो राइस मिल के पास आप देखे होंगे भूसी, वो भी एकदम धान जैसा ही लगता है, उसके भीतर का चावल तो निकल जाता है लेकिन वो भूसी दिखता है। अगर कोई उस भूसी को ले जाकर उखल मूसल से कूटे ये बड़े बड़े मशीन आज की तरह पहले नहीं था, उखल में कूटना पड़ता था या ढेकी में कूटना पड़ता था। तो अगर उखल में रख करके उस भूसी को खूब कूटे हाथ से, तो उसमें तो चावल पहले से निकल चुका है। तो स्थूल तुषाव घाती नाम, जैसे स्थूल तुष को, केवल तुष को, भूसी को कूटने वाले को जो प्राप्त होगा, वही प्राप्त भक्ति के अलावा दूसरे प्रयास में हो सकता है। केवल ज्ञान के प्रयास, केवल बोध लब्ध है, जो ज्ञान प्रयास के ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करते हैं, उनको केवल परिश्रम, समय की बर्बादी होती है और कुछ नहीं मिलता। अब भूसी कूटने से चावल मिलेगा, चावल तो पहले निकल चुका है। तो उस भूसी को चाहे दिन भर कूटो या एकदम पाउडर बना दो, उसमें चावल नहीं मिल सकता है, कुछ नहीं मिल सकता है। उसी प्रकार केवल क्लेश ही क्लेश, परिश्रम ही हाथ लगता है, श्रम ही हाथ लगता है और कुछ नहीं मिलता है। इसके साथ कहते हैं, पूरे है भूमन बहो पिजोगिन तदर पितेहा निज कर्म लब्धया विबुद्ध भक्त कथोपनीतया प्रपदिरेंजो चितते गतिम पराम। हे नाथ, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे कुछ कल्पना कर रहा हूं, बहुत लोग पहले प्रयास किए हैं पहले से ही। हे भूमन, हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से लोग जोगी हुए जो आपको प्राप्त किए, लेकिन उन्हें योग आदि से आपकी प्राप्ति नहीं हुई। बहुत बड़े अष्टांग योग, कठोर योग साधना किए, लेकिन वे लोग आपको प्राप्त नहीं कर पाए। कौन प्राप्त कर पाया? तदर्पितेहा, जिन्होंने अपनी इच्छा को, इहा को, निज कर्म लब्धया, अपने परिश्रम की कमाई को आपके चरणों में समर्पित किया है, वह व्यक्ति केवल आपको प्राप्त कर सकता है, और कोई नहीं। विबुद्ध भक्तैव कथोपनीतया, आप तो केवल कथा के द्वारा, कथा ही कृष्ण की भक्ति को ला सकती है, ढोक लाती है। कथोपनीतया भक्तैव कथोपनीतया, भक्ति के द्वारा, उस भक्ति में भी कथा के माध्यम से वो आपके प्रेम को ढोक लाती है। प्रपे दीरेंजो चित्ते गतिम पराम, वो समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई है, और उस भक्ति से आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त बड़ी सुगमता से हो जाती है, आपकी प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाती है, केवल भक्ति से, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास एक चौपाई में कहते हैं कि जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, नाम जी है जब जाने तेऊ। कहते हैं अगर भगवान के गूढ़मय रहस्य को जो सचमुच जानना चाहता है, कि हम भगवान के रहस्य को जान जाएं, तो उसको बहुत अध्ययन करने पढ़ने की जरूरत नहीं है। जाना चाहे गूढ़ गति जेऊ, जो व्यक्ति भगवान के गोपनीय गूढ़ रहस्य को जानना चाहता है, नाम जी है जप जाने उतेऊ, जो भगवान का नाम जीभ से उच्चारण करता है वो जान जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में जो भगवान को जानना चाहता है उसको नाम जप करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, ज्यादा इधर उधर के प्रयास नहीं करना चाहिए। और इसके बाद श्रील प्रभुपाद का सबसे फेवरेट श्लोक श्रीमद् भागवतम के, अब मैं सभी श्लोकों पर नहीं, अब फिर आठवां श्लोक देखिए जो प्रभुपाद का बहुत फेवरेट था। और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार तो अपने हर प्रवचन में भक्तों को उत्साहित करते हुए कहते थे, महाराज श्री कहते हैं कि भाई जी का भी बहुत प्रिय था और प्रभुपाद का भी। वो है, तत्ते अनुकंपां सुसमीक्ष मारो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग बपुर्वी दधन नमस्ते जीवेत जो मुक्ति पदे सदाय भाक। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नाथ, जो लोग भली भांति आपके कृपा की अनुभूति करते हैं, तत्ते अनुकंपां सुसमीक्ष मारा, आपकी कृपा को देखता है, अनुभूति करता है, केवल साधारण ढंग से नहीं देखता है, सुसमीक्ष मारा, हर स्थिति में आपकी कृपा की जो अनुभूति करता है, किसी भी परिस्थिति में, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, हर समय भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, अपने पूर्व कृत फल को, अपने प्रारब्ध को, अपने जीवन में मिलने वाले सुख और दुख को जो आसानी से भोगता है, भगवान की कृपा समझकर और हृदय से, वाणी से, शरीर से विनम्र होकर जो आपको नमस्कार करता है, विनम्र भाव से आपके सामने झुकता है, अपने वाणी, अपने शरीर आपके चरणों में समर्पित करता है, विदधन नमस्ते, तो वह व्यक्ति जीवेतयो इस प्रकार जीवन धारण करता है, व्यतीत करता है, आपको नमस्कार करता है, वाणी से कुछ आपके गुणों का वर्णन करता है, शरीर से विनम्र है और अपने जीवन में मिलने वाले सुख दुख से संतुष्ट है, वह व्यक्ति आपके पद को, मुक्ति पदे, जो चरण, जो आपका चरण मुक्ति देने वाली है, उस चरण को अथवा आपके वैकुंठ धाम को, आपके पद को वैसे प्राप्त करता है जैसे बाप की संपदा को बेटा। उत्तराधिकारी दाय भाग, दाय भाग का मतलब उत्तराधिकारी, बिना परिश्रम के जैसे बेटे को बाप की संपदा मिल जाती है अपने आप, केवल इतना स्पष्ट पता चल जाना चाहिए, प्रमाणिक हो जाना चाहिए कि उसका बेटा है, बस केवल पुत्र प्रमाण पत्र मिल जाना चाहिए, उसको सरकार भी वो संपदा दे देगी, वो अपने बाप की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, केवल बेटा होने मात्र से अधिकारी हो जाता है। उसी प्रकार हे नाथ, जो अपने जीवन में मिलने वाले सुख दुख को आपकी कृपा के रूप में देखते हैं और हृदय से, वाणी से, शरीर से, सब तरह से जो विनम्र होकर आपको नमस्कार करते हैं, वे व्यक्ति आपके पद को, आपके वैकुंठ धाम को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, बहुत आसानी। इस विषय में एक सुप्रसिद्ध कथा महात्मा लोग कहते हैं, आप लोग सुने हैं, फिर भी प्रसंग बस मैं बताना चाहता हूं। एक राजा का मंत्री था, भगवान की कृपा का बहुत अनुभूति करता था, बात बात में कहता था बहुत अच्छा, भगवान की स्पेशल कृपा है, कुछ भी होता, सुख मिले, दुख मिले, हानि हो, लाभ हो, उसके बारी से स्वाभाविक निकल जाता, बहुत अच्छा हुआ, ये भगवान की विशेष कृपा है। तो एक दिन राजा के साथ वो मंत्री कहीं गया था वन में शिकार करने, राजा गया, उसके साथ वो भी गया, केवल मंत्री ही नहीं था, वो निजी सचिव था, साथ साथ रहता था। तो राजा किसी तरह बाण चलाने में उनका धनुष में फंस कर अंगूठा कट गया, अंगूठा कट गया तो राजा दुखी हो गए, मंत्री का कोई बात नहीं, भगवान की विशेष कृपा है, स्पेशल कृपा है, अच्छा हुआ, भगवान की कृपा है। तो मंत्री तो जानते थे कि आदत बस ऐसा ही बोलता ही है, क्या कर, कुछ विशेष ध्यान नहीं दिए। आए जब अपने राजधानी में, घर पर आए तो राजा का अंगूठा कटा देख कर फ्लेटरी करने वाले लोग तो रो रहे हैं, हाय हाय क्या हुआ, राजा का अंगूठा कट गया, अंगूठा कट गया, सब रो रहे थे। तो मंत्री कहा कोई बात नहीं, तो भगवान की कृपा है, दूसरों को भी समझाता था, ये रोने की इसमें बात क्या है, तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। तो राजा सुने कहे सभी लोग रो रहे हैं, ये हमारा अंगूठा कटा है, कृपा हो गई, इसको बंद कर दो जेल में। अब नाराज हो गया राजा और कह दिए कि बंद में, बंद कर दो जेल में। तो मंत्री को बंद कर दिया, अरेस्ट कर लिया गया, धीरे धीरे वो घाव सूखा, राजा ठीक हो गया, अंगूठा तो कट गया सो कट ही गया। अब इसके बाद मतलब पूरा कट कर बाहर चला गया था, अंगूठा नहीं रहा, ठीक हो गया घाव। कुछ दिनों के बाद की एक घटना है कि राजा एक दिन जंगल किनारे टहल रहा था, घूम रहा था, तो जंगल में रहने वाले कुछ दस्यु ग्रुप साल में एक बार नर बलि देते थे, काल भैरव को या काली को जो हो, तो एक मनुष्य को खोजते थे और उनका सिर काटते थे देवी के सामने। तो खोज रहे थे तब तक राजा मिल गया, बड़ा सुंदर शरीर वाला, तो बड़ा खुश हुए, ले गए। तो सरदार कहा कि ठीक है, सब चेक चाक कर लो, कहीं कटा फटा तो नहीं है, एकदम एक बाना है ना, पूरा पूरा ठीक है। तो जब जांच चालू हुआ तो उसका अंगूठा कटा हुआ था। तो सब निराश हो गए कि इतना परिश्रम से खोज कर लाया भी और एक कटा हुआ निकल गया, तो ये देवी के काम लायक नहीं है। तो फिर दो चार तमाचा लगाए, भगा दिए। बदमाश पहले ही हाथ दिखा दिया होता तो इतना टाइम नहीं बर्बाद होता। तो फिर राजा घर पर लौटा और मन ही मन सोचने लगा कि मंत्री जी वास्तव में ठीक कहे थे, अगर उस दिन अंगूठा नहीं कटा होता तो आज गर्दन कट गई होती। तो अब रियलाइज कर लिया राजा कि वास्तव में भगवान की कृपा है। मंत्री को जेल से निकलवाए, राजा अपने पास बुलाए और कहे, मंत्री जी यह बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि वास्तव में अंगूठा कटना भगवान की कृपा है, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि आपको जेल में बंद कराकर भगवान कौन कृपा किए। तो उस समय भी मंत्री जब जेल में जा रहा था तो पुलिस वाले पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। वो तो हमेशा कहता था, जेल में भी गया तो भी कह रहा था भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। तो राजा जब ऐसा प्रश्न किए कि यह कौन सी कृपा है, कहते ये तो स्पष्ट है महाराज, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आज आपके साथ ही गया होता, और आप तो अंगूठा कटने से बच जाते, मेरा सिर कट जाता। तो भगवान आपका अंगूठा कटवा कर आपकी रक्षा कर लिए, मुझको अरेस्ट करा कर, ये भगवान की स्पेशल कृपा है। तो इस तरह हर स्थिति में भगवान की कृपा का अनुभूति यह है सुसमीक्षमाणो भुंजाने एवात्मकृतम विपाकम, अपने जीवन में मिलने वाले सुख दुख को, अपने प्रारब्ध को बड़ी आसानी से निर्विकार मन से जो भोग लेता है, और जो प्रेम पूर्ण हृदय से, गदगद वाणी से, पुलकित शरीर से जो आपके चरणों में समर्पित होकर प्रणाम करता है, वह व्यक्ति आपके पद को प्राप्त कर लेता है। कैसे? जैसे बाप के संपदा को बेटा, ये उदाहरण दे रहे हैं। हे नाथ पशेष मे नार्ज मनंत आदे परात्मनि तो यपि माई मायने मायाम वितत्ते क्षित मात्म वैभवम हे हम क्रिया नैक्षत निवार चिरग्नौ। कहते हे प्रभु देखिए जरा हमारी औकात को, मैं कितना तुच्छ नीच प्राणी नीच जीव हूँ, देखिए मेरी कुटिलता को, मेरे अज्ञान को, मेरी क्षुद्रता को। आप अनंत आदि पुरुष है, परम पुरुष परमात्मा है, और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी लोग, बड़े बड़े जोगी लोग जो अपनी माया से स्वयं मोहित रहते हैं, आपकी माया पर विजय नहीं प्राप्त कर पाते, आपके माया के चक्र में हैं, फिर भी मैं आप पर अपना माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहा। मैं सोचा कि अपनी माया से आपको वशभूत कर लूं। हे प्रभु मैं आपके सामने हूं ही क्या, मेरा क्या विषात है, क्या आग के सामने चिंगारी की कोई गिनती है। कहते हैं ये हम ही अहम क्रिया नैक्षम इव अर्ची अग्नौ, जैसे अग्नि पुंज के सामने चिंगारी का क्या औकात है, उसी प्रकार आप महान के सामने मेरा कोई बस नहीं। जैसे अनंत समुद्र के सामने एक बिंदु का महत्व है, अनंत सिंधु में एक बिंदु का जो स्थान है वही हमारा स्थान है। एक बिंदु के सामने वो सिंधु समुद्र कितना बड़ा हो सकता है। तो हे नाथ मैं अपनी मूर्खता से आपको जांचने का प्रयास किया, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। 12वें श्लोक में कहते हैं उत्पेक्षणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरधोक्ष जागसे किमास्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे क्रियदप्यनंत। हे नाथ हे अधोक्षज, हमारे वृत्तियों के द्वारा, हमारे बुद्धि के द्वारा, हमारे इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आने वाले नहीं है, प्राकृत बुद्धि से परे। हे अधोक्षज, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है उत्पेक्षणम गर्भगतस्य पादयो, माँ के पेट में रहने वाला छोटा सा बच्चा कुछ नहीं जानता है कि हम कर क्या रहे हैं। कभी हाथ चलाता है, कभी पैर चलाता है, और हाथ पैर चलाने से हाथ पैर जब पीटता है तो उस समय माँ को कष्ट होता है, उनके पेट में दर्द होता है। लेकिन क्या कभी माँ उस गर्भगत शिशु पर नाराज होती है? बल्कि खुश होती है कि मेरा बच्चा पेट में जीवित है, चल रहा है। डॉक्टर के पास जाने पर भी डॉक्टर बताता है, हाँ जीवित है, वो तो हाथ पर चलाता है, घूम रहा है, ये तो अच्छी बात है, इससे थोड़ा कष्ट होगा ही। तो यह जानकर कष्ट होते हुए भी माँ को प्रसन्नता होती है कि मेरा बच्चा जीवित है, मेरे गर्भ में चल फिर रहा है। तो क्या माँ कभी उस बच्चे के हाथ पर चलाने को अपराध मानती है? वैसे ही हे नाथ, मेरे द्वारा जो आपके प्रति अपराध हुआ उसे आप क्षमा कर देना। मैं आपका गर्भगत शिशु के समान हूं, मेरे अपराध को आप केयर मत कीजिए, क्षमा कर दीजिए। तवास्ति कुक्षे केदप्यनंत। और यह मैं कविता नहीं कर रहा हूं, वास्तव में सारा विश्व ब्रह्मांड आपके कुक्षी में है। आप भूमन, आप महान पुरुष, आप विराट पुरुष के कोख में सारा विश्व ब्रह्मांड है, ऐसा आपने कई बार दिखाया है। तत्रैव माया धमनावतारे यस्य प्रपंचस्य बहिःस्फुटस्य कृत्नस्य चांतर जठरे जनन्या माया तुमेव प्रकटीकृतम थे। हे प्रभो, हे माया का नाश करने वाले, आप यदि माया का नाश नहीं करेंगे तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। अभी इसी अवतार में, ऐसे दूसरे अवतार में और कहीं वेद पुराण में पढ़कर नहीं कह रहा हूं, अभी इसी अवतार में आप इसी छोटे शरीर में माँ का अस्तन पीते हुए जब गोद में आपने थोड़ा सा अपना मुंह फैलाया तो सारा विश्व ब्रह्मांड को अपने कुक्षी में, अपने गर्भ में दिखाया। सारा जगत जब आपके कुछ में है तो क्या मैं उसके बाहर हूं? मैं भी आपका गर्भगत शिशु हूं। और एक बार नहीं, दो बार आपने अपनी मां को कृत्नस्य चांतर जठरे जनन्या, आपने अपनी जननी को, अपनी मां को दिखाया है। मिट्टी खाए अवस्था में अभी इसी सत्र में आप कथा सुने हैं कि मां जब मिट्टी देखने के लिए मुंह फैलाने को कही और मुंह फैलाए तो सारा विश्व ब्रह्मांड दिख गया। माया तुम्हें वह प्रकटी कृतम थे, आपने अपनी मां के सामने सारे विश्व ब्रह्मांड को दिखाया था। तो मैं आपका गर्भगत शिशु हूं, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं। अगर कोई हाथ पैर फैलाया, अपनी बुद्धि लगाया, आपके बछड़ों को चुराने का, साथियों को चुराने का प्रयास किया तो गर्भगत शिशु को क्षमा कर दीजिए नाथ। इस तरह से ब्रह्मा जी अत्यंत विनम्र भाव से स्तुति कर रहे हैं। जरा विचार कीजिए कि ब्रह्मा जैसे जगत सृष्टा पितामह इतना विनम्र भाव से भगवान के सामने झुककर प्रणाम कर रहे हैं, और हमारे जैसे कीट पतंग, मशक, कीड़े कभी कभी भगवान के ऐश्वर्य के प्रति चैलेंज करते हैं, चैलेंजिंग मूड में हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, ये निरा मूर्खता है। फिर बहुत सारे श्लोक है, समय तो हो गया, क्या कहा जाए, कैसे संक्षेप किया जाए। चलिए, शाम के समय आप लोग कुछ देर से सुनने के लिए तैयार रहिएगा। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।
हरे कृष्णा, गौर कृष्ण प्रभु की जय।